नमस्कार। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई देश ना हो, कोई अलग अलग धर्म ना हो और पूरी इंसानियत की सिर्फ एक जाति हो।
ये तो किसी सपने जैसा लगता है।
बिल्कुल, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों पहले तैयार किया गया एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की गहराई में उतर रहे हैं और हम एक बड़ा सवाल पूछने वाले हैं। क्या ये एक यूटोपियन सपना था या एक ऐसी हकीकत जो होकर ही रहेगी, और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं?
आज हम खास तौर पर इस सत्संकल्प के 16वें संकल्प पर ध्यान देंगे, जो कहता है राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। ये एक वाक्य में आप कह सकते हैं भविष्य का पूरा नक्शा खींच देता है।
चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं।
जी,
वो कहते हैं कि हमने विज्ञान और तकनीक में तो कमाल की तरक्की कर ली है, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी चेतना, हमारी समझ का स्तर वो गिरा है।
बिल्कुल, और नतीजा ये है कि हम इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग कर रहे हैं
और पहले से ज्यादा समस्याओं में फंस गए हैं।
बिल्कुल, और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि पूज्य गुरुदेव इन हजारों समस्याओं की जड़ में सिर्फ दो बड़े संकटों को पहचानते हैं।
सिर्फ दो?
हाँ, सिर्फ दो। पहला है बिखराव, यानी फ्रेगमेंटेशन। हम इसे आज हर जगह देखते हैं, सोशल मीडिया पर बने हमारे अपने एको चेंबर से लेकर।
हाँ, जहाँ हर कोई अपनी अपनी अलग दुनिया में जी रहा है।
बिल्कुल, और राजनीतिक ध्रुवीकरण तक।
और दूसरा संकट?
दूसरा है विषमता, मतलब इनइक्वालिटी। और ये सिर्फ अमीरी गरीबी की आर्थिक विषमता नहीं है।
अच्छा,
ये सामाजिक विषमता भी है, अवसरों की विषमता भी है, जहाँ किसी को जन्म के आधार पर ज्यादा मौके मिलते हैं और किसी को कम।
पूज्य गुरुदेव का तर्क है कि हमारी सारी बड़ी छोटी समस्याएं इन्हीं दो जड़ों से निकलती हैं, बिखराव और विषमता।
तो अगर ये समस्या की जड़ है तो समाधान क्या है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है।
समाधान भी इन्हीं में छिपा है।
सत्संकल्प में कहा गया है कि आने वाला युग, यानी 21वीं सदी, इन्हीं दोनों संकटों का समाधान लेकर आएगी।
कैसे?
भविष्य की पूरी व्यवस्था दो ही सिद्धांतों पर चलेगी, एकता और समता।
एकता और समता?
हाँ, और ये कोई विकल्प नहीं होगा, ये कोई सुझाव नहीं है कि ऐसा कर लें हो अच्छा होगा।
मतलब ये होकर रहेगा।
सत्संकल्प की भाषा बहुत मजबूत है। उसमें लिखा है कि हर व्यक्ति को इच्छा से या अनिच्छा से इन सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। इसे महाकाल का निर्धारण कहा गया है।
महाकाल का निर्धारण? ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी की भविष्यवाणी को नहीं है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। महाकाल का मतलब है समय की वो शक्ति जो सब कुछ बदल देती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता।
अच्छा,
तो जब गुरुदेव कहते हैं कि ये महाकाल का निर्धारण है, तो उनका मतलब है कि ये बदलाव इतिहास की एक परिवर्तनशील शक्ति है।
An inevitable force.
जिसे टाला नहीं जा सकता।
हाँ,
ये होकर रहेगा। इसके सामने खड़े होने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई पतंगा जलती हुई लौ को बुझाने चला जाए,
या कोई तिनका बवंडर से टकराने की सोचे।
बिल्कुल, अंत में अस्तित्व उसी का मिटेगा जो इस प्रवाह के खिलाफ जाएगा।
तो फिर इस एकता का स्वरूप कैसा होगा? क्या हम सब एक जैसे हो जाएंगे? सत्संकल्प में इसकी क्या तस्वीर खींची गई है?
इसकी बहुत साफ तस्वीर है और इसे तीन स्तरों पर समझाया गया है। सबसे पहला स्तर है मनुष्य जाति की एकता। सत्संकल्प कहता है कि भविष्य में पूरी दुनिया में इंसान की एक ही जाति होगी।
और वो क्या होगी?
सुसंस्कृत सभ्य मनुष्य जाति।
इसका मतलब चमड़ी के रंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेद है वो खत्म हो जाएंगे?
बिल्कुल, गोरा, काला, पीला, गेहुआ, इन रंगों के आधार पर खुद को अलग मानना बीते युग की बात हो जाएगी। जाति पाति के नाम पर या स्त्री पुरुष होने के आधार पर अलग अलग खेमे बनाकर रहना, ये सब आदिम युग की निशानियां मानी जाएंगे।
तो फिर नए दौर में कीमत किस चीज की होगी?
सिर्फ एक ही चीज की, न्याय और तर्कसंगत व्यवहार। आपकी पहचान आपके कर्मों से होगी, जन्म से नहीं।
ठीक है, ये तो हुआ पहला स्तर, लेकिन एकता का यह विचार सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं है ना?
नहीं, इसे तो वैश्विक स्तर पर भी ले जाया गया है। सत्संकल्प में कहा गया है कि यह पूरी धरती एक देश बनकर रहेगी।
पूरी धरती एक देश?
हाँ, और इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर ने यह धरती अपने सभी बच्चों के लिए बनाई है।
तो फिर?
तो इसकी प्राकृतिक संपदा पर भी सभी का बराबर का हक होना चाहिए। आज जो देशों के बीच में हमने ये लकीरें खींच दी हैं, वे अन्यायपूर्ण हैं।
आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं, ये अन्यायपूर्ण कैसे है?
देखिए, इस विभाजन की वजह से होता ये है कि कुछ देश जिनके पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं, वे उन पर कब्जा करके अमीर बन जाते हैं।
और बाकी दुनिया
अपनी जरूरतों के लिए तरसती रहती है। इसे ही सत्संकल्प में मत्स्य न्याय या जंगल का कानून कहा गया है।
मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी वाला सिस्टम।
बिल्कुल वही। कुछ देश अमीर हैं क्योंकि उनके पास तेल है या खनिज हैं, और वे तय करते हैं कि बाकी दुनिया कैसे जिएगी। सत्संकल्प कहता है कि ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। भविष्य में जब विश्व एक देश होगा, तो ईश्वर की दी हुई इस धरती की पैतृक संपत्ति पर सबका समान अधिकार होगा।
लेकिन मेहनत का क्या?
हाँ, कोई अपने परिश्रम और अपनी काबिलियत से ज्यादा कमा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो धरती माँ से मिला है, उस पर तो सबका बराबर का हक है।
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो ये नहीं है कि दुनिया को एक देश होना चाहिए।
वो तो कई लोग कहते हैं।
हाँ, यहाँ पर जो असली इनसाइट है वो ये है कि इसे एक आध्यात्मिक अनिवार्यता, महाकाल का निर्धारण माना गया है। मतलब ये होगा ही, चाहे हम चाहें या ना चाहें।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
ये एक बहुत बड़ा दावा है।
यही इस विचार का मूल है। अब आते हैं एकता के तीसरे और सबसे संवेदनशील पहलू पर, धर्म।
धर्म?
सत्संकल्प का कहना है कि धर्म और संप्रदायों के नाम पर बनी दीवारें भी ढह जाएंगी।
एक मिनट, जब हम एक मानव धर्म की बात करते हैं, तो कई लोगों को ये डर लग सकता है कि उनकी अपनी पहचान, उनकी संस्कृति। हाँ, क्या सत्संकल्प इस चिंता पर कोई रोशनी डालता है? क्या एकता का मतलब यूनिफॉर्मिटी है, मतलब सब कुछ एक जैसा हो जाना?
ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं।
नहीं,
एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। सत्संकल्प ये नहीं कहता कि सारी पूजा पद्धतियां या परंपराएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये कहता है कि जो धर्म आज खुद को सच और दूसरों को झूठा साबित करने में लगे हैं, उनकी ये संकीर्णता खत्म होगी।
अच्छा,
उन्हें समझा जाएगा कि वे सब एक ही विशाल जलाशय में उठने वाली लहरों की तरह हैं। लहरें अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन उनका मूल तो एक ही पानी है।
पानी के बुलबुलों की तरह।
बिल्कुल, जो थोड़ी देर दिखते हैं और फिर उसी विशाल जलराशि में मिल जाते हैं।
तो फिर ये एक मानव धर्म होगा क्या?
इस विचारधारा के अनुसार शुरुआत में सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों का सम्मान करना, वो एक काम चलाउ नीति की तरह काम करेगा।
एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह।
हाँ, लेकिन अंततः दुनिया का एक ही धर्म होगा, मानव धर्म। और इस मानव धर्म के सिद्धांत किसी एक पुस्तक या किसी एक पैगंबर पर आधारित नहीं होंगे।
तो किस पर होंगे?
इसका आधार होगा आदर्शवादी सोच, अच्छा चरित्र और मानवतावादी व्यवहार।
हर मान्यता को तर्क, तथ्य, प्रमाण और अनुभव की कसौटी पर परखा जाएगा। जो खरा उतरेगा उसे स्वीकार किया जाएगा।
इस बिखराव के नुकसान को लेकर सत्संकल्प में एक कहानी का भी जिक्र है ना?
हाँ, तैमूर लंग की कहानी।
वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जी, जब उसने पेशवा की सेना के शिविर में हजारों जगहों से धुआं उठते देखा, तो हैरान हो गया। उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि हिंदू सैनिक अलग अलग जातियों के हैं और एक दूसरे का छुआ भोजन नहीं करते,
इसलिए सब अपने अपने रसोई अलग बना रहे हैं।
हाँ, ये सुनकर तैमूर हंसा और बोला, जो जाति इस तरह बटी हुई हो, उसे जीतना क्या मुश्किल है।
और इतिहास गवाह है कि उसने उस विशाल सेना को हरा दिया।
ये कहानी दिखाती है कि हमारा आपसी बिखराव ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है।
वहीं दूसरी तरफ एकता की भावना कैसी हो सकती है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण विनोबा भावे जी का दिया गया है।
जी, किसी ने उनसे उनकी जाति के बारे में और गहराई से पूछते हुए कहा कि आप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं, तो कोंकणस्थ हैं या देशस्थ? तो विनोबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं देश में रहता हूँ इसलिए देशस्थ हूँ, मैं काया यानी शरीर में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ, और सबसे बढ़कर मैं स्वस्थ हूँ, जिसका किसी धर्म, जाति या देश से कोई संबंध नहीं है।
वाह।
कहते हैं कि ये जवाब सुनकर वो सवाल पूछने वाले सज्जन अपनी संकीर्ण सोच पर बहुत शर्मिंदा हुए।
ये बात आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। हम अपनी पहचान को कितने सारे लेबलों से बांध कर रखते हैं। मैं इस राज्य से, इस जाति से, इस धर्म से।
बिल्कुल।
विनोबा जी का जवाब हमें आईना दिखाता है कि हम कितने संकीर्ण हो गए हैं। पानी की बूंदों का उदाहरण भी कितना सटीक है ना? अकेली बूंद को तो हवा का एक झोंका भी सुखा सकता है, पर जब वही बूंदें मिलकर एक विशाल जलाशय बन जाती हैं, तो उनकी शक्ति देखने लायक होती है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमें चर्चा को वापस उस मूल संकल्प पर लाना होगा।
जी,
हमने एकता पर तो बहुत बात की, लेकिन उस संकल्प में एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द था, समता।
हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रीय एकता एवं समता। हमने एकता के तीन स्तरों को तो समझ लिया, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में समता यानी इक्वालिटी का क्या मतलब है? ये एकता से कैसे जुड़ी है?
यह इस पूरी चर्चा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। असल में इस विचारधारा के अनुसार एकता और समता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अच्छा,
बिना समता के सच्ची एकता कभी आ ही नहीं सकती। समाज में बिखराव का सबसे बड़ा कारण ही विषमता है, मतलब भेदभाव।
सही बात है।
जब आप किसी को जाति, लिंग या भाषा के आधार पर छोटा या अलग समझते हैं, तो एकता की बात करना ही बेमानी है।
तो सत्संकल्प में किस तरह की समता की बात की गई है? क्या ये आर्थिक बराबरी है?
यह उससे कहीं ज्यादा गहरी है। संकल्प के शब्दों पर फिर से ध्यान दीजिए। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। यहाँ हर उस आधार को छुआ गया है जो इंसानों के बीच दीवार खड़ी करता है।
एक एक करके समझते हैं इनको।
पहला है जातिगत समता, यानी जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा। दूसरा है लैंगिक समता, मतलब लिंग, यानी पुरुष और नारी को बराबर के अधिकार और सम्मान मिलेंगे। समाज की प्रगति में दोनों का योगदान बराबर माना जाएगा।
मुझे लगता है कि लैंगिक समता वाला बिंदु आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
बहुत ज्यादा।
क्या सत्संकल्प में नारी और पुरुष की भूमिका को लेकर कुछ और भी कहा गया है?
हाँ, पूज्य गुरुदेव के लेखन में ये विचार बार बार आता है कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी आधी आबादी यानी स्त्रियों को पीछे रखता है।
सही है।
उनके अनुसार नए युग में नारी को बराबरी का दर्जा देना सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जरूरत होगी।
आध्यात्मिक जरूरत।
हाँ, क्योंकि चेतना के स्तर पर पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है, ये भेद सिर्फ शारीरिक है। जब तक हम ये विषमता बनाए रखेंगे, हमारा समाज एक पंख से उड़ने की कोशिश करने वाले पक्षी की तरह रहेगा।
जो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता।
कभी नहीं।
ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, तो एकता मंजिल है और समता उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है।
बिल्कुल।
जब तक हम भेदभाव की छोटी छोटी दीवारें नहीं गिराएंगे, तब तक हम एक विश्व राष्ट्र या एक मानव धर्म जैसी बड़ी बातों तक पहुंच ही नहीं सकते।
आपने एकदम सही सार निकाला है। एकता एक अमूर्त विचार की तरह लग सकता है, लेकिन समता एक व्यावहारिक अभ्यास है जिसे हमें हर रोज हर पल जीना है। जब आप किसी दूसरे प्रांत के व्यक्ति से मिलते हैं या किसी अलग भाषा बोलने वाले से बात करते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा है, वहीं से समता की शुरुआत होती है।
तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो सार ये है कि पूज्य गुरुदेव के 16वें सत्संकल्प के अनुसार भविष्य का प्रवाह दो निश्चित दिशाओं में बह रहा है,
बिखराव से एकता की ओर
और विषमता से समता की ओर।
जी, चाहे वो मनुष्य जाति की एकता हो, एक विश्व राष्ट्र की कल्पना हो, या एक मानव धर्म का उदय हो, इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ये होकर रहेगा।
ये समय की मांग है।
बिल्कुल।
और ये भविष्य की कोई दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। सत्संकल्प में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति सूर्योदय का इंतजार नहीं करता,
बल्कि उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देता है।
हाँ, ताकि सूरज निकलते ही वो अपने काम में लग सके। वैसे ही इस नए युग के सूर्योदय के लिए हमें अपने मन, अपने विचार और अपने स्वभाव में बदलाव अभी से लाने होंगे।
और सत्संकल्प की वो बात फिर से याद करने लायक है जो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
कौन सी?
कि ये बदलाव इच्छा या अनिच्छा, मतलब विलिंगली और अनविलिंगली, स्वीकार करना ही होगा। हम चाहें तो खुशी खुशी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर समय की धारा हमें मजबूरन बहाकर ले जाएगी। चुनाव हमारा है।
और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। जब महाकाल का यानी समय का प्रवाह एकता और समता की ओर है, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आज ऐसी कौन सी छोटी छोटी कृत्रिम दीवारें, चाहे वे जाति की हों, भाषा की हों, प्रांत की हों या किसी और भेदभाव की, गिरा सकते हैं? वो दीवारें जो हमें इस महान प्रवाह में शामिल होने से रोक रही हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।